एनजीओ की कार्रवाई पर भी और एनजीओ की मतलब ये कि उनकी उनको क्लियरेंस लेने के लिए भी एक बिल्कुल वाजे पॉलिसी होनी चाहिए और एक तमाम एनजीओ को बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली ऑपरेट करना चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो है वो कवानीन में होनी चाहिए और उनके ऊपर अमल होना चाहिए। इसमें तो दो राय नहीं हो सकती और कोई एनजीओ जो है एनजीओ की पर्दा डालकर और इस किस्म के रियासत के खिलाफ काम नहीं कर सकते या अपना एजेंडा नहीं चला सकते जो कि रियासत के मफाद में ना हो। तो ये चीजें तो अपनी जगह पर हैं और ये तमाम जितने भी ममालिक हैं दुनिया में ये चाहेंगे कि इसी तरह हो, लेकिन पाकिस्तान चूंकि अपनी रियासत उसकी कई चीजों पर कंट्रोल नहीं रखती है और रियासत की जो इदारे हैं वो कमजोर हैं तो उससे कई एनजीओ जो हैं वो फायदा भी उठाते हैं और ऐसी चीजें करते हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसमें एनजीओ कई ऐसे भी हैं जो कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के भी हैं। आप ये भी याद रखिए कि न सिर्फ एनजीओ बाहर के ममालिक के ऐसे काम कर रहे हों जो कि शायद रियासत के मफाद में ना हो, लेकिन कई तो ऐसे हैं पाकिस्तानी एनजीओ जो कि इस किस्म के काम कर रहे हैं जो कि रियासत को कमजोर कर रहे हैं या सेक्टेरियनिज्म या फिरकावाराना या लसानी बुनियादों के ऊपर काम कर रहे हैं।
अच्छा, तो एक सवाल ये पैदा होता है कि बहरहाल ये तो एक चार्ज था कि वो स्पाइंग करते हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है जैसा कि आपने कहा कि जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते हैं वो मुल्क में निफाक पैदा करवा सकते हैं, तो उसको किस तरह से आप उसका जवाब कर सकते हैं?
इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। एक तो जो फिरकावाराना हैसियत है जिनकी और जो फिरकावाराना फसादात या आपस में इख्तलाफात को बढ़ाना चाहते हैं उनको तो इजाजत ही नहीं होनी चाहिए कि वो यहाँ ऑपरेट करें। उनको अगर फलाही काम कर रहे हैं वो दूसरी बात है। देखिए, आप लसानी बुनियाद पर भी और फिरकावाराना बुनियाद पर भी आप इंसानी खिदमत कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसको इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप एक दूसरे के फिरके में तफरीक पैदा कर रहे हैं, दुश्मनियाँ पैदा कर रहे हैं या आपके कोई और अजायम हैं कि जो रियासत को कमजोर कर रहे हैं, तो वो फिर और या दूसरे ममालिक के आप एजेंट बन के यहाँ काम कर रहे हैं तो ये बड़ा जरूरी है ये भी पता करना कि इनकी फंडिंग के सोर्सेज क्या हैं। ये तमाम चीजें जो है वो बिल्कुल आया होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कहीं से भी फंडिंग लें और पता ही ना हो कि फंडिंग का सोर्स क्या है, तो फिर उससे भी शक शुभा होता है कि भाई इनका पता नहीं क्या अजायम है या इनके क्या एजेंडा है।
अच्छा, आखिर में एक बात आप ये बताइए कि आप अगर इस किस्म की सूरत हाल पैदा होती है तो आप क्या तजवीज करेंगे कि किस तरह से इन एनजीओ को रेगुलराइज किया जा सकता है पाकिस्तान में या दूसरे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में?
देखिए, बड़ा मुझे तो इतना मुश्किल नहीं लगता, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो मुश्किलात है वो ये है कि रियासत अगर वाकई में अपने रियासत की तरह एक अपना फंक्शन अदा करे तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं है। पहले तो उसका तमाम कवानीन जो मेरे ख्याल में बहुत हद तक पाकिस्तान में है मौजूद, एक तो इनके लिए कवानीन ऐसे होने चाहिए कि जो जिस तरीके से अभी हमने बात की उसको एक लिहाज से कानून साजी इनकी होनी चाहिए। अगर किसी जगह कानून साजी में कमी है या कोताही है तो वो कानून साजी जरूर हो सकती है ताकि इनकी ओवरसाइट जो है और इनकी ट्रांसपेरेंसी जो है उसको यकीन बनाया जाए। इसके साथ साथ फिर इनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव वगैरह और उसके बाद फिर इनके ऊपर थोड़ी सी नज़र भी रखनी चाहिए कि भाई जो इनके मकासद हैं वो उसी के ऊपर कायम है या कोई और मकासद ये अपने हासिल करना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक ओवरसाइट की भी जरूरत है, फिर कानून साजी की भी जरूरत है अगर किसी किस्म की कानून साजी आजकल कम है, और उसके साथ साथ फिर मैं ये समझता हूँ कि खुली छुट्टी नहीं देनी चाहिए। हर हुकूमत रियासत का फर्ज बनता है कि तमाम जितने भी एनजीओ हैं इनके ऊपर नजर रखी जाए और एक मिनिस्ट्री को मेरे ख्याल में एक इंचार्ज करना चाहिए कि वो इनके ऊपर नजर रखे। इसके साथ साथ सारा बोझ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पर भी नहीं डालना चाहिए, इसलिए कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इस वक्त बेइंतहा हर चीज में मसरूफ है और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर جو ہماری ہے اس میں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ دونوں کی چونکہ بعض دفعہ ذمہ داری ہوتی ہے تو دونوں سمجھتے ہیں کہ دوسرا کام کر رہا ہے تو ہمیں زیادہ اس میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس سے بعض چیزیں نظر سے نکل جاتی ہیں اور پھر اس سے این جی اوز فائدہ اٹھاتے ہیں. تو میرے خیال میں ذمہ داری کا بھی بالکل فوکس ہونا چاہیے کہ کس منسٹری کی کیا ذمہ داری ہے.
بہت شکریہ جنرل طلعت مسعود صاحب آپ کا. اور سامعین اب چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. اب بلوچستان جو پاکستان کا ایک رقبے کے لحاظ سے کافی بڑا صوبہ ہے, اس میں آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ایک عرصہ دراز سے بد امنی جاری ہے اور وہاں پر جو ملیٹنٹس ہیں انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں, لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہاں پر صورتحال کچھ تبدیل ہو رہی ہے اور گزشتہ چند روز کے دوران ان ملیٹنٹس میں سے ان جنگجوؤں میں سے بہت سو نے ہتھیار ڈالے ہیں. ہم گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ تو انور ساجدی صاحب موجود ہیں جو بلوچ امور کے ایک ماہر ہیں اور تجزیہ کار ہیں. ساجدی صاحب یہ بتائیے کہ کیا آپ کوئی صورتحال تبدیل ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں؟
ایسا ہے جی, یہ آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ ففتھ انسرجنسی بلوچستان میں چل رہی ہے
جی,
48 سے اب تک
جی,
اور یہ سب سے طویل ہے جو گزشتہ 9 برس سے جاری ہے
جی.
اور اس طرح سے پہلے بھی کام ہو چکے ہیں کہ وہ ان کو فراری کہتے ہیں سرکاری لوگ
جی,
کہ وہ فراری انہیں ہتھیار ڈال دیے. تو یہ کچھ عرصہ پہلے سلسلہ شروع ہوا تھا اور ابھی گزشتہ روز جو ہمارے مریض سردار ہیں ان کے سامنے 2 کمانڈر اور کچھ لوگوں نے ہتھیار ڈالے, اور آج خوزدار میں جو نواب ثناء اللہ ہے تو ان کے سامنے 2 لوگوں نے کمانڈروں نے اور باقی لوگوں نے ہتھیار ڈالے
جی.
تو یہ بڑے لو پروفائل کے لوگ ہیں اور غیر معروف اور انجانے لوگ لگتے ہیں
جی,
کوئی ایسے مشہور نہیں تھے کہ جیسے فیلڈ میں ہوں اور لوگ ہوں
جی.
تو کوئی غیر معروف لوگ ہیں, اور اصل بات یہ ہے کہ اس طرح کے کاروائیوں سے جو اوور آل سچویشن ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا.
اچھا ساجدی صاحب یہ بتائیے کہ بلوچستان میں حالات کو معمول پر لانے کے لیے ایک عرصے دراز سے کوششیں ہو رہی ہیں, بلوچستان کا ایک پیکج بھی دیا گیا تھا اب سے کچھ عرصے قبل, پھر ایک وہاں پر عوامی حکومت بھی قائم ہے, ڈاکٹر مالک بھی کوشش کر رہے ہیں, تو ان کوششوں کا اب تک کیا نتیجہ برآمد ہوا ہے؟ صرف یہ نتیجہ کہ چند لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں؟
بنیادی بات یہ ہے جی کہ کسی قسم کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی
جی.
جو اصل مرض ہے اس کی تشخیص اور علاج پر کوئی توجہ نہیں ہے, یہ صرف سرسری باتیں کرتے ہیں, سرسری اقدامات کرتے ہیں, جو اصل مسئلہ جو ہے وہ موجود ہے. اگر ابھی تھوڑا سا اس میں کمی آئی تو آئندہ وقت میں پھر دوبارہ وہ سر اٹھا سکتا ہے. تو بنیادی ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اصل مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں, اور یہ کئی ادوار سے کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے.
اچھا, اور یہ کوششیں جو ہیں یہ رائٹ ڈائریکشن میں نہیں ہو رہی ہیں؟ جو ڈاکٹر عبد المالک کو جو چیف منسٹر ہیں وہ جو کوششیں کر رہے ہیں ان کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ وہ تو خود بلوچ ہے.
وہ تو بات یہ ہے کہ کوئی ڈائلاگ اور گفت و شنید کا کوئی سلسلہ شروع ہو, وہ تو جو لوگ پہاڑوں میں ہیں وہ تو بات کرنا نہیں چاہتے, ڈاکٹر صاحب نے خود بھی کہا ہے
جی,
اور یہ ان کی طرف جا نہیں سکتے ہیں, اور باقی جو ادھر لوگ موجود ہیں وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے
جی
جب تک کہ کوئی اصلی فریق سے ملاقات نہ ہو
جی,
باقی ایگزائل میں ہیں جی.
اچھا,
تو کوشش ایسی نہیں ہو رہی ہے جی.
اچھا, تو یہ بتائیے کہ آپ کیا سجیسٹ کریں گے, کس قسم کی کوششیں ہونی چاہیے؟ جو مسئلہ آپ کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ تو وہاں کا وہی ہے, وہ مسئلہ ہے کیا آخر؟
اصل مسئلہ ہے بلوچ ایک قومی تحریک ہے تو بلوچ حقوق کے لیے چل رہی ہے, جب تک کہ وہ اس حقوق کو تسلیم نہ کیا جائے یا اس پر گفت و شنید کم از کم شروع نہ کی جائے تو وہ تو معاملہ جوں کے توں رہیں گے جی. اصل بات تو بلوچ حقوق اور بلوچ تحریک ہے جی.
مگر پاکستان میں جس طرح سے دوسرے صوبے میں لوگوں کو حقوق حاصل ہیں, بلوچستان میں بھی لوگوں کو حقوق حاصل ہیں, اس میں کیا پرابلم ہے؟
سرکاری نقطہ نظر یہی ہے نا, لیکن وہ جو بلوچ تنظیموں کے نمائندے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس کو ایک کالونی کی حیثیت حاصل ہے, اس کو اسلام آباد سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے چلایا جا رہا ہے, ادھر فیک الیکشن ہو رہے ہیں, اور ان کے جو ریسورسز ہیں اور ساحل ہے उनको छीनने की कोशिश की जा रही है जी, उनका ये नुक्ता नजर है।
अच्छा, दूसरी ये बताइए कि ये जो नुक्ता नजर रखने वाले लोग हैं, ये इनको जब ये कहा जाता है कि ये मेन स्ट्रीम में आकर अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये तो आते नहीं, ये सिर्फ हथियार उठाए हुए हैं, तो क्या उससे ये अपने मकासद हासिल कर सकते हैं?
देखिए जी, ये तो मुझे नहीं पता कि वो मकासद हासिल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं कि नवाब अकबर खान मेन स्ट्रीम में आए थे, इस मुल्क के वजीर दिफा बने, गवर्नर बने, चीफ मिनिस्टर बने, सरदार सौला खान बने, उनका क्या असर हुआ? जो वो कहते हैं कि हमें तो गारंटी चाहिए, जब तक गारंटी नहीं मिलेगी तो हम यानी मेन स्ट्रीम में नहीं आ सकते।
अच्छा, दूसरा एक सवाल ये पैदा होता है, अनवर साजिदी साहब के जो बात कही जाती है कि उनके हकूक का मसला है, उन्होंने कभी संजीदगी से आकर इन मसाइल पर गुफ्तगू भी की है हुकूमत से, या कि सिर्फ थोड़े से लोग हथियार उठाकर जद्दोजहद कर रहे हैं, समझते हैं कि वो बलूचिस्तान हासिल कर लेंगे? और दूसरे जो बातें कही जाती हैं कि वहां पर गैर मुल्की मदाखलत भी हो रही है, उसके बारे में वहां क्या तासुर है?
हाँ, ये सरकारी तौर पर यही कहा जाता है कि इसमें इंडियन एजेंसी आप मुलविस है और दीगर ममालिक जो अदारे मुलविस हैं, लेकिन अभी तक कुछ लोगों को गिरफ्तार करके शवाहद के साथ आवाम के सामने पेश नहीं किया गया। अगर कोई गिरफ्तारियां हुई हैं तो वो कोई सीक्रेट है जी, तो इनको चाहिए कि वो सबूत पब्लिक में लाए जाए ताकि वाकई पता चले, लोगों को यकीन आ जाए, तो भरोसा में तासर कायम हो कि जी गैर मुल्की मुदाखलत हो रही है। आज तक तो कोई सबूत सामने नहीं आ सका जी।
मगर एक सवाल ये पैदा होता है कि ये जो ग्रुप है या जो लोग इस वक्त लड़ रहे हैं, जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं, क्या इन्होंने अब तक अपने हकूक को डिफाइन किया है? वो चाहते क्या है?
देखिए जी, वो तो बहुत एक्सट्रीम पर है। ये दुनिया में होता है कि आप एक इंतहा पर होते हैं, फिर गवर्नमेंट भी आती है, फिर वो गुफ्तगू होती है, तो कोई कुछ लो और कुछ लो पर बात हो सकती है। वो तो आजादी मांग रहे हैं जी ना, तो अब जाकर कोई पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो आजादी नहीं दे सकती, तो बीच का कोई रास्ता निकालने की जरूरत है जी।
जनाब, बहुत शुक्रिया अनवर साजिदी साहब आपका। और सामईन, अब हम जाएंगे एक ब्रेक पर, जिसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे कराची में हड़ताल की, जो बजट के हवाले से वहां पर हो रही है। सिंध असेंबली का बजट कल पेश किया गया था, जिस पर MQM ने अपना शदीद रद्द अमल जाहिर किया है। हड़ताल हो रही है, हम गुफ्तगू करेंगे वहां पर अपने ताजरों से और उन लोगों से जो इस बारे में कोई नुक्ता नज़र रखते हैं।
What's up, Pakistan? Kya scene hai Pakistan? Janiye facebook.com/voaurdu ya twitter.com/urduvoa. Humse raabta kijiye urduvoa.com par. What's up, Pakistan? Kya scene hai Pakistan? urduvoa.com.
क्या ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे? दहशतगर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जंग? आलमी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी?
पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान? जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa। हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। What's up पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान? उर्दू VOA।
क्या ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे? दहशतगर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जंग? आलमी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी?
اور سامعین اب ہم بات کریں گے سندھ کے بجٹ اور وہاں اس کے رد عمل کے طور پر ہونے والی ہڑتال کے بارے میں. سندھ کا بجٹ پیش کیا گیا تھا اور ایم کیو ایم کا جو وہاں پوزیشن کی جماعت ہے اس کا موقف یہ تھا کہ یہ جو بجٹ ہے یہ عوامی بجٹ نہیں ہے, اس سے عوام کو تکالیف ہوں گی, اس لیے آج انہوں نے ہڑتال بھی کی تھی. اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ہڑتال کے حوالے سے چند ہی روز قبل کراچی میں پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک عجیب و غریب بات کہی تھی جس پر بعد میں بھی رد عمل ہوا. دیکھیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا تھا.
احتجاج کی آپ نے بات کی, احتجاج جب آپ کہہ رہے تھے تو میں گورنر صاحب سے کہہ رہا تھا گورنر صاحب اس بات کو غور سے سنیں, آپ غور سے سنیں کہ جو کراچی میں مکھی بھی اگر مر جاتی ہے تو احتجاج ہوتا ہے, اسٹرائک ہوتی ہے. تو میں نے گورنر صاحب کی توجہ مرکوز کرائی تھی کہ آپ کی گفتگو سنیں اور اس کا انتظام کریں, وہ اور یہ اسٹرائکس جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے اور ملک کی.
اور کل جب ایم کیو ایم نے ہڑتال کا اعلان کیا تو پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے اس پر کچھ یوں رد عمل کا اظہار کیا.
کراچی کے امن سے منسوب نہ صرف کراچی کی ترقی ہے بلکہ پورے پاکستان کی ترقی ہے. ہڑتال سے, تیز و تند تقاریر سے, دھرنوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے بلکہ خلیج بڑھتی ہے. ہر جمہوری ملک میں ہر مسئلے کا حل اداروں میں موجود ہے, کسی بھی سیاسی مسئلے کا حل, عوامی مسئلے کا حل اسمبلیز میں موجود ہے, پارلیمنٹ میں موجود ہے, صوبائی اسمبلی میں موجود ہے. یہ جو ایک وتیرہ سا, ایک فیشن سا بن چکا ہے کہ ہر مسئلے کا حل ہڑتال میں ہے, ہر مسئلے کا حل دھرنے میں ہے, ہر مسئلے کا حل شور و غل میں ہے, یہ جمہوری معاشرے میں نامناسب ہے.
تو جو وزیر اعظم نے بات کہی تھی کہ مکھی کے مرنے پر بھی ہڑتال ہو جاتی ہے, اس پر ایم کیو ایم کے سربراہ الطاف حسین نے اور ایم کیو ایم کی دوسری لیڈرشپ نے اور بعض دوسرے لوگوں نے بھی رد عمل کا اظہار کیا تھا. اور بعد میں وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے اس کی وضاحت کی کہ ان کی مراد عام مکھی سے نہیں بلکہ شہد کی مکھی سے تھا جن کو وہ الطاف حسین کا چاہنے والا کہتے ہیں. تو سامعین یہ صورتحال تھی. ہم پوچھیں گے ہمارے ساتھ تو شہزاد حسین صاحب جو ہمارے نمائندے ہیں کراچی میں کہ ہڑتال کی کیا صورتحال رہی آج. جی شہزاد صاحب,
متحدہ قومی موومنٹ نے آدھے دن کی ہڑتال کی اپیل کی تھی یا اعلان کیا تھا اور وہ جو سندھ کا بجٹ پیش کیا گیا اس کے رد عمل میں تھی. بعد میں ایم کیو ایم نے کہا تھا کہ 1 بجے ہڑتال ختم کر دی جائے کیونکہ رمضان کی تیاریاں جاری ہیں. تو اب آج اتوار کا دن تھا اور وہ 1 بجے تک کی ہڑتال تھی. تو اب جو جس اینگل سے دیکھنا چاہے ویسے دیکھ رہا ہے. ویسے مقامی ذرائع ابلاغ میں جو سامنے آتی ہے بات وہ یہ ہے کہ جو صبح کھلنے والی کچھ چیزیں ہیں وہ بند تھیں, پیٹرول پمپ بند تھے تو ٹریفک بھی معمول سے کم تھی. اور سندھ کے دیگر شہروں کے بارے میں, یہ تو کراچی کی صورتحال تھی, دیگر جو شہر ہیں سندھ کے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جز بھی تھی, کہیں نہیں تھی کہیں تھی, ملا جلا رجحان جو ہے. لیکن اس پہ جس طرح دوسروں نے ریئیکٹ کیا اس میں یہ دو چیزیں سامنے آئی ہیں. ایک تو شرجیل میمن صاحب جو, انہوں نے کہا ہے کہ متحدہ نے بغیر بجٹ پڑھے ہڑتال کا اعلان کر دیا اور یہ عوام دوست بجٹ ہے. متحدہ نے کہا تھا کہ یہ متعصبانہ ہے اور جو وزیر خزانہ ہے انہوں نے شاید یہ سوال پوچھا ہے کہ بھائی کیوں متحدہ نے ہڑتال کی اپیل کی. تو یہ ہے پوری, کیونکہ ان کے خیال میں ان کو نہیں پتا کہ ریزن کیا ہے.
ویسے ایم کیو ایم والے کیا کہتے ہیں کہ ریزن کیا ہے؟
اگر ایم کیو ایم والے جو ہیں ان کی پریس ریلیز کے مطابق یہ متعصبانہ ہے, اس میں تفریق ہے شہری سندھ کی, دہی سندھ کی. اس پہ بھی میں نے پڑھا ہمارے لوکل اخبار میں کہ جو شرجیل میمن ہے انہوں نے کہا کہ یہ اس میں تفریق نہیں ہے, لیکن ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ یہ متعصبانہ ہے, شہری اور دہی آبادی کا اس میں فرق جو ہے اس پہ بھی بات کی گئی ہے.
اچھا ہمارے ساتھ رجیے کے شہزاد صاحب, ہمیں جوائن کیا ہے جناب میاں ابرار صاحب نے جو کہ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر ہیں اور خود بھی ایک صنعت کار ہیں. میاں ابرار یہ فرمائیے کہ جو اس قسم کی ہڑتالیں ہوتی ہیں, پرائم منسٹر نے بھی اس کے بارے میں کہا, پھر آپ نے ہوم منسٹر کو بھی سنا, لیکن جیسے کہ یہ ہڑتال کی پرام رہی, کوئی خاص بات نہیں ہوئی, اتوار کا دن تھا, زیادہ تر دکانیں اور بازار بند ہوتے ہیں, تو کیا واقعی کوئی نقصان ہوا ہے اس ہڑتال سے؟
کا نقصان ہوتا ہے پر ڈے, اور یہ اس میں وہ شامل نہیں ہے جو ڈیلی ویج ارنرز ہیں, اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو پورٹ پہ آف ڈے کام کرتے ہیں, اور بہت سے ایسے شعبے ہیں ہماری معیشت کے جس میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں اس کاؤنٹنگ میں جو میں نے آپ کو اماؤنٹ بتایا ہے. इतवार के दिन में उतना बड़ा नुकसान तो नहीं होता, लेकिन इंडस्ट्री तो चलती है इतवार के दिन भी। इंडस्ट्री जो प्रोसेस इंडस्ट्री है वो तो 24 घंटे चलती है, साल के 12 महीने चलती है। मैं समझता हूँ कि हड़तालों से मतवातर हड़तालों से एक ऐसा इन्वायरमेंट पैदा हो जाता है जहाँ पे कारोबार और प्रोडक्शन के अंदर अनसर्टेनिटी रहती है, और जब किसी भी कंट्री की या शहर की प्रोडक्टिविटी अनसर्टेन हो जाए तो उस शहर की एक्सपोर्ट्स अनसर्टेन हो जाती हैं, उसमें बजटरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बहरहाल दुनिया के किसी भी शहर में हड़तालें अगर हों तो मैं समझता हूँ कि मईशत के लिए बेहतर नहीं है।
अच्छा ये बताइए कि जब आप ये समझते हैं कि हड़तालें नुकसान होती है, हड़तालों से नुकसान होता है, माली नुकसान होता है, मईशत तबाह होती है, लेकिन जब ये ऐसी सूरत हाल बन जाती है तो उसमें प्रोटेस्ट का भी तो कोई तरीका होना चाहिए। ठीक है आपका तो नुक्ता नज़र यही है, लेकिन जिन लोगों की हकूक तरफी होती है बकौल उनके, उनके पास भी तो कोई वे आउट होना चाहिए उसके लिए।
मेरा ख्याल है उसके लिए जो सबसे बड़ा सबसे जरूरी है, जहाँ पर इस मामले में हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हुकूमत जो 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 अनासर या जो शोबे या जो सियासी पार्टियां उस हुकूमत की पॉलिसी से एग्री नहीं करती वो उनका हक है, और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ऐसा इसका कोई मॉडल सुप्रोडी बनाए, ऐसा कोई सिस्टम बनाए कि हड़ताल अगर होती है तो मैं समझता हूँ ये हुकूमत का फेलियर है। हुकूमत को उनको कन्विंस करना चाहिए, उनको ऐसी नेगोशिएटिंग टेबल पे लाना चाहिए, ऐसे मौके पैदा करने चाहिए कि वो आगे हुकूमत से नेगोशिएट करें और ये विन विन सिचुएशन हो उनके लिए भी और हुकूमत के लिए भी, क्योंकि अल्टीमेट सफरर्स जो है वो आवाम है। लिहाजा ये दोनों पार्टियों का ये जिम्मेदारी बनती है और खास तौर पर हुकूमत की, हुकूमत उनको नेगोशिएटिंग टेबल पे लेके आए, उनसे नेगोशिएट करे और वो मौका ना आने दे जिससे हड़ताल हो।
अच्छा मियां अब्रार एक सवाल और पैदा होता है, मैं जब आप मेरे साथ हैं इस टेलीफोन लाइन पर तो मैं चाहूंगा कि आपसे ये सवाल भी कर लूं कि पाकिस्तान में इस वक्त तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, क्या उसमें भी इस किस्म की हड़तालें जो हैं वो रुकावट बनती है, या ये कि जो मजमूई तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो रुकावट बनती है?
मैं समझता हूँ जी कि दोनों चीजें रुकावट नहीं बन सकती, ना मजमूई तौर पर और ना हड़तालें, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में भी जो है जर्मनी के अंदर और यूरोप के अंदर इन्वेस्टमेंट होती रही है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के अलावा तो भी इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। $43 बिलियन की चाइना से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है और ये हमारे हड़तालों के और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और टेररिज्म के होते हुए आई है $43 बिलियन की। इसी तरह टर्की से भी पाकिस्तान के ज्वाइंट वेंचर हो रहे हैं, जर्मनी पाकिस्तान का सेकेंड लार्जेस्ट पार्टनर है, जर्मनी से $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है, इसी तरह टर्की से आ रही है इन्वेस्टमेंट और कंट्री से इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान में। मसला यह है कि हमारा मीडिया जो है और इंटरनेशनल जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है पाकिस्तान का, वो यही किया जा रहा है कि पाकिस्तान में हर वक्त लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रहती है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है और ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेड इन पाकिस्तान नहीं है, ये इंपोर्टेड है, बाहर से आई हुई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है जो पाकिस्तान में डिस्टेबलाइज कर रहे हैं पाकिस्तान को इकोनॉमिकली। लिहाजा इन चीजों के मद्देनजर जैसे आपने कहा कि मजमूई तौर पर या इंडिविजुअली कराची शहर को सामने रख लें या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो रही है, सिर्फ ये है कि वो परसेप्शन ऐसा पाकिस्तान का क्रिएट हुआ है कि उस इन्वेस्टमेंट को कोई बात बता नहीं रहा, उस इन्वेस्टमेंट की कोई बात नहीं कर रहा, उस इन्वेस्टमेंट को गिना नहीं जा रहा। मैं समझता हूँ कि देर इज नॉट अ सिंगल डे व्हेन इन्वेस्टमेंट इज नॉट कमिंग इन पाकिस्तान, इन्वेस्टमेंट हो रही है, लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हो जाए और हमारे यहाँ हड़तालें बंद हो जाए तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान अगले नेक्स्ट 5 साल में पाकिस्तान बी एन इकोनॉमिक पावर।
अच्छा मैं असल में उस हवाले से भी आपसे बात करूंगा, ये बताइए मुझे कि जो एक बात ये कही जाती है कि पाकिस्तान में अब उन्होंने निजकारी का फैसला किया हुआ है और 70 जो हैं आइटम्स ऐसे हैं जो उनके उस लिस्ट पर हैं, तो क्या उस निजकारी से पाकिस्तान में माशी सूरत हाल बेहतर होगी?
मैं समझता हूँ जी निजकारी जो है वो इतना बड़ा शोभा नहीं है कि जैसे स्टील मिल है, PIA है और बड़े बड़े रेलवे हैं और बड़े बड़े इदारे हैं। निजकारी जो है वो निजकारी इसलिए की जा रही है कि ये इदारे जो हैं ये नुकसान में जा रहे हैं और ये नुकसान हुकूमत की जो फिलॉसफी ऑफ डूइंग बिजनेस है वो मेरे ख्याल में बेहतर नहीं होती। आपने यूरोप में भी देखा है, अमरीका में भी देखा है कि इन ममालिक में कहाँ हुकूमतें ये चलाती हैं, इतने इतने बड़े एयरक्राफ्ट और इतने इतने बड़े फाइटर जेट्स और ये और वो, ये सारी प्राइवेट कंपनीज बनाती हैं, हुकूमत का बिजनेस नहीं है बिजनेस करना। ज्यादा अगर ये निजकारी होती है तो ये उन शोबों के लिए बेहतर है। मैं नहीं समझता कि इस निजकारी से जनरली पाकिस्तान में कोई बेहतरी आएगी, हाँ उस निजकारी से उन इदारों में और उन इदारों में काम करने वाले लोगों के लिए जरूर बेहतरी आ सकती है।
अच्छा एक सवाल और यहाँ ये पैदा होता है कि आपने एक जमाने में आप बहुत बड़े एडवोकेट थे हिंदुस्तान के साथ तिजारत के और खासा आपने उस पर काम भी किया था, लेकिन ये कि अब जो सूरत हाल डेवलप हो रही है इस रीजन में, आप ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के साथ उस बड़े पैमाने पर तिजारत फीजेबल है जो मौजूदा सरकमस्टेंसेस हैं उनमें?
देखिए जी, मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उससे। मैं बहुत कीन सपोर्टर था और आज भी हूँ कि रीजनल बिजनेस होनी चाहिए, हमारी रीजनल इंटीग्रेशन होनी चाहिए। यूरोपियन यूनियन जो है वो तकरीबन 70% बिजनेस करते हैं रीजनल बिजनेस, और आप एशियन कंट्रीज देख लें कोई 60% करते हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज देख लें, जितने ब्लॉक्स दुनिया में बने हुए हैं ये अच्छी खासी 40-60% बिजनेस करते हैं। हमारे यहाँ रीजनल इंटीग्रेशन नहीं हो रही, सार का जो इदारा है वो नाकारा है। लिहाजा रीजनल इंटीग्रेशन इसलिए नहीं हो रही कि इंडिया पाकिस्तान के डिफरेंसेस हैं, और मैं इतना सपोर्टर था कि हमने इंडिया में बॉम्बे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जॉइंट चैम्बर की बुनियाद भी रख दी थी। लेकिन इंडिया की तरफ से मैं समझता हूँ कि मैं जाती तौर पर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ कि इंडिया का जो रेटोरिक है पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो मैं समझता हूँ कि रीजनल इंटीग्रेशन में एक बहुत बड़ी रुकावट है। लेकिन बहरहाल इंग्लैंड और फ्रांस और जर्मनी में भी 100 साल की जंग रही है, और हमारे यहाँ जो है जो डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ है दोनों ममालिक में, इसको दूर करने की जरूरत है, रीजनल इंटीग्रेशन की जरूरत है। और आज नहीं, 5 साल के बाद नहीं, 50 साल के बाद ये रीजनल इंटीग्रेशन इंडिया की भी जरूरत है, और इस रीजनल इंटीग्रेशन के ना होने से पाकिस्तान को कम और इंडिया को ज्यादा नुकसान हो रहा है। और इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स हैं आज वो ये सोच रहे हैं कि बेशक इंडिया को इकोनॉमिक नुकसान होता रहे लेकिन पाकिस्तान को इकोनॉमिक फायदा नहीं होना चाहिए। ये जब पॉलिसी उनका माइंडसेट चेंज होगा तो मेरा ख्याल है रीजनल इंटीग्रेशन भी होगी, और ये खिता ना सिर्फ तरक्की करेगा कि बल्कि सेंट्रल एशिया और रीजनल ट्रेड जो है, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रही है, जिसका इवेंचुअली इंडिया भी फायदा उठाएगा, आज नहीं उठाएगा तो 10 साल के बाद उठाएगा, ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगी। इसलिए कि हमारी नेशनल डॉक्ट्रिन में है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना है, जब किसी कंट्री के नेशनल डॉक्ट्रिन में एक चीज आ जाती है कि ये चीज बननी है तो वो फिर चीज बनती है। लिहाजा रीजनल इंटीग्रेशन के लिए ये पहला स्टेप है। मैं समझता हूँ कि इंडिया जितनी जल्दी समझे उतना इस खतरे के लिए बेहतर है।
बहुत शुक्रिया मियां अब्रार आपका, और हमारे साथ तो इस वक्त तो डॉक्टर तौसीफ अहमद साहब है, उन्होंने कराची से हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो आज की हड़ताल है आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ बजट है या ये कि इसकी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी हो रही है इसमें?
देखिए बहुत वाजे बात है कि 2 दिन पहले तो वजह नवाज शरीफ ने कहा था गवर्नर साहब से कि कराची में हड़ताल नहीं होनी चाहिए
जी,
और उनके वो मतनाजा कमेंट थे कि मक्खी भी मर जाए तो कराची में हड़ताल होती है
जी।
तो जाहिर है एमकेएम ने उनके इस्तेमाल के खिलाफ एहतजाज किया था और उस पर एहतजाज करने के लिए उन्होंने बजट का सहारा लिया और आज हड़ताल कराई। मगर आज की हड़ताल थोड़ी मुख्तलिफ थी, गुज़िश्ता 20 सालों से जो एमकेएम हड़ताल कराती है बहुत ज्यादा मौसम नहीं थी, 1 बजे खत्म हो गई थी और आम जिंदगी में कोई इसका बहुत कोई मेरा ख्याल फर्क मुझे नजर नहीं आया। कुछ इलाकों में हुआ होगा मगर मजमूई तौर पर तो सूरत हाल नॉर्मल थी, बाजार खुले हुए थे, ट्रांसपोर्ट चल रही है।
तो क्या डॉक्टर साहब आप ये समझते हैं कि इसकी वजह एमकेएम की जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है कराची में उसमें कमी है या ये कि उन्होंने सिर्फ एक सिंबॉलिक किस्म की हड़ताल की थी?
देखिए कमी तो नहीं है किसी सूरत में, वो तो अभी जब अजीजाबाद का इलेक्शन हुआ तो उसे साबित हो गया। ये जरूर है कि एमकेएम ये बताना चाहती है एस्टेब्लिशमेंट को, वफाकी गवर्नमेंट को, कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई ना करे और अपने ऑपरेशन का रुख किसी और तरफ मोड़े। तो वो एक दबाव की कैफियत को इस्तेमाल कर रही है एमकेएम कि उसके खिलाफ जो ऑपरेशन है उसमें कोई कमी आ जाए।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर तौसीफ अहमद आपका। शहजाद साहब भी हमारे साथ थे। अब हम एक ब्रेक लेंगे, स्टेशन आईडी के बाद फिर हम गुफ्तगू करेंगे। फैसल बारी साहब हमारे साथ होंगे, हम एक आलमी बैंक की रिपोर्ट के बारे में गुफ्तगू करेंगे।
व्हाट्स अप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa। हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, urduvoa.com।
What's up Pakistan? क्या सीन है पाकिस्तान? जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर. What's up Pakistan? क्या सीन है पाकिस्तान? urduvoa.com.
समीन, अब इस सेगमेंट में हम गुफ्तगु करेंगे एक तंजीम है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट IFAD, उसने और वर्ल्ड बैंक ने एक मुश्तरका रिपोर्ट जारी की है और उसमें ये कहा है कि आने वाले हफ्तों, महीनों और बरसों में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तरफ बहुत सारे गैर मुल्की लेबर और वर्कर्स आएंगे और यहाँ उनके लिए बहुत अट्रैक्शन होगा. जो बज़ाहिर सख्त सूरत हाल है पाकिस्तान की इकोनॉमी की, उसमें तो ये ज़ाहरी तौर पर एक अमरे माहौल से नज़र आता है, लेकिन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बनने के बाद और अगर इसी रफ्तार से इकोनॉमिक बेटरमेंट आता है तो उस सूरत में यकीनन ये हो सकता है कि बाहर के वर्कर्स यहाँ पर आएं अच्छे वेजेस के लिए और अच्छे कामों के लिए, बेहतर माहौल में काम करने के लिए. इस बारे में हम गुफ्तगू करेंगे. हमारे साथ तो एक मुमताज़ माहिर माशियात जनाब फैसल बारी साहब होंगे जिनको हम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो हमें बताएंगे कि इस रिपोर्ट की बुनियाद क्या है और इस रिपोर्ट की जो हकीकत है वो किस हद तक, इसलिए कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी डिकेड में यानी इस अशरे में ये अट्रैक्शन जो है इसके सबब लोग आना शुरू हो जाएंगे यहाँ पर. क्या वाकई ये एक हकीकत है? गुफ्तगु करेंगे हम जनाब फैसल बारी साहब से. फैसल बारी साहब हमारे साथ हैं जी, उनकी टेलीफोन की घंटी बज रही है, वो टेलीफोन उठाएं तो फिर हम उनसे गुफ्तगु को आगे बढ़ाते हैं कि इसकी बुनियाद क्या हो सकती है और ये कि क्या ये सिर्फ पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर का समर होगा, ये कि पाकिस्तान की अपनी इकतसादी तरक्की भी इस सिलसिले में कोई रोल अदा करेगी और हिंदुस्तान की, और ये कि जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका इस सिलसिले में क्या रोल होगा और उनसे किस हद तक इस्तेफादा किया जा सकता है इस सिलसिले में. हमें टेलीफोन लाइन पर उनका इंतज़ार है. जैसे वो टेलीफोन उठाएं तो हम उनसे गुफ्तगू करते हैं. मेरे ख्याल में कुछ टेलीफोन लाइन में प्रॉब्लम है. हम उनको स्काइप पर लेने की कोशिश कर रहे थे, अगर स्काइप पर नहीं आ रहे हैं तो फिर हम उनको टेलीफोन पर ही ले लेते हैं. कोई टेलीफोन लाइन में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कॉल थ्रू नहीं हो रही है. देखिए, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया आपको कि सूरत हाल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से फ़िलहाल ऐसा लगता है कि ये चीज़ नामुमकिन सी हो कि पाकिस्तान से या हिंदुस्तान से बड़ी तादाद में जो वर्कर्स हैं वो दूसरे मुल्कों में जाते हैं रोज़गार की तलाश में, इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए. लेकिन ये रिपोर्ट तो कुछ दूसरी ही कहानी सुना रही है कि इससे, इस डेवलपमेंट से बाहर के लोग यहाँ आएंगे. मेरा ख्याल ये है कि हम एक स्टेशन ब्रेक लेते हैं जिसके बाद फिर हम ट्राई करेंगे, इसलिए कि टेलीफोन लाइनें जो हैं वो कुछ गड़बड़ कर रही हैं.
What's up पाकिस्तान? क्या सीन है पाकिस्तान? जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर. What's up पाकिस्तान? क्या सीन है पाकिस्तान? urduvoa.com.
अस्सलाम वालेकुम फैजल बारी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है?
हेलो
जी फैजल बारी साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको?
जी जरा थोड़ी आ रही है, पर आ रही है.
अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो एक रिपोर्ट है, अभी आपसे तस्करा हो रहा था, गुफ्तगु हो रही थी, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है کہ آنے والے عشرے میں پاکستان اور ہندوستان میں اتنا اکنامک اٹریکشن ہوگا کہ باہر سے ورکرز یہاں آئیں گے؟ کیا بیسس ہے اس رپورٹ کی؟ جی ان کی لائن میرا خیال یہ ہے کہ پھر ڈراپ ہو گئی ہے. ہم ایک اسٹیشن آئی ڈی لیتے ہیں, جس کے بعد اگر ان کی لائن مل گئی تو پھر ان سے گفتگو کریں گے.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
لائن مل گئی ہے فیصل باری صاحب کی, تو میرا خیال یہ ہے کہ سامعین ہم دوبارہ ٹرائی کریں گے. اس دوران میں ہم اپنے اگلے ٹاپک کی جانب جاتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے کوئی 4500 ہندوؤں اور سکھوں کو بھارت میں نریندر مودی کی حکومت نے بھارتی شہریت دی ہے, اور بی جے پی کے بقول ہندوستان جو ہے وہ مظلوم ہندوؤں کا گھر ہے, اور 200,000 پناہ گزین ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت تو بھارت میں موجود ہیں. اس کے اسباب کیا ہیں, اس کے سیاسی مضمرات کیا ہوں گے, اور یہ معاملہ کس جانب جا رہا ہے, اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر دہلی سے ہیں جناب پرتاب سومونشی. جی پرتاب سومنشی صاحب, آپ لائن پر ہیں؟
جی سر, میں حاضر
ہوں. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو تقریباً 4,500 ہندوؤں اور سکھوں کو سٹیزن شپ دی گئی ہے پاکستان اور افغانستان کے, اس کا کوئی سیاسی پس منظر بھی ہے؟
دیکھیے, سیاسی پس منظر یہ ہے کہ آپ دیکھیے جب الیکشن چل رہے تھے ہندوستان میں, تو یہ جس پارٹی کے حوالے سے یہ حکومت میں ہے نریندر مودی صاحب, تو وہ ایک بات بہت بولا کرتے تھے کہ جو ہندوستان کے باہر پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان, یہاں جو ہندو ہیں وہ ان کا جو پورے رائٹس ہیں انڈیا پہ وہ اسی طرح سے ہیں جیسے کسی ایک کامن سٹیزن کے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا ایجنڈا رہا ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کا پہلے سے بھی. اور اگر آپ دیکھیں کہ جو وہاں سے لوگ آتے ہیں پاکستانی ہندوؤں کے, یہاں پہ جو کیمپ وغیرہ میں رہتے ہیں, تو یہ سارے آر ایس ایس کے لوگ, بی جے پی کے لوگ, یہ ان کو کھانا پہنچانا, ان کے لیے کام کرنا, یا ان کو کوئی ضرورت ہو تو کرنا, اور یہ باقاعدہ ان کے ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں کہ کیسے پاکستان میں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور کیسے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو بعد میں یہاں پہ وہ جو جب یو پی اے کی سرکار تھی تو اس کے خلاف ہوئی ہے, کہتے تھے کہ دیکھیے صاحب وہاں پہ ہو رہا ہے, کچھ نہیں کر رہا ہے. اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی جب سرکار آئی تب سے ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ بھائی اب ہم ان لوگوں کو یہ احساس دلائیں گے کہ ہندوستان آپ کا گھر ہے, اور گھر آنے والے کو کبھی منع نہیں کیا جا سکتا, اور جب کوئی اپنے گھر آنا چاہتا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ ہم کہاں روک لیں گے. تو اسی لیے دو ٹرم یوز ہوئے, انہوں نے کہا کہ جو بنگلہ دیش سے ویسے لوگ آئیں گے وہ گھسپیٹھیے ہیں, لیکن اگر ہندوز یہ لوگ آئیں گے تو یہ ریفیوزی ہیں. تو گھسپیٹھیے اور ریفیوزی دو ٹرم یوز کیے گئے, اور دونوں ٹرم کے پولیٹیکل معنی.
اچھا, جو وہاں کی اپنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور جو وہاں کا میڈیا ہے, اس کا کیا رد عمل ہے اس بارے میں؟
دیکھیے, میڈیا مجھے لگتا ہے اس کو لے کے بہت زیادہ کوئی سکبکاہٹ جیسی چیزیں اس کو لے کر کے نہیں رہی. اور یہاں پہ اگر آن گراؤنڈ بھی آپ دیکھیں تو کوئی بہت آپ کو ایجیٹیشن نہیں دیکھے گا, کوئی पक्ष में विपक्ष में, ये जो सारे सवाल चूंकि वो खड़े करती थी भारतीय जनता पार्टी पहले जब वो अपोजिशन में थी, अब जब है तो कोई जो अपोजिशन में भी पार्टीज हैं वो ये कह नहीं सकती कि नहीं आप इनको वीजा नहीं दें। अपोजिशन में भी जो पार्टीज हैं वो भी ये नहीं कह पाएंगी कि नहीं आप उनको लॉन्ग टर्म वीजा न दें। आप जैसे 4200 या 4300 के आसपास करीब 4230 के अराउंड जो आप बता रहे थे कैलकुलेशन, ये वो है जो सिटीजनशिप दी गई है लोगों को
जी।
तो ये यहाँ पे कोई इस पे बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि सबकी अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, और बीजेपी खुल के बोलती है कि हाँ हम उनको वेलकम करेंगे जितने भी लोग आएंगे।
अच्छा प्रताप सोमवंशी साहब, एक सवाल ये पैदा होता है कि जो मौजूदा एक मंजर है इस वक्त, तो जो सूरत हाल है जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक मरतबा फिर खासी कशीदगी है, तल्ख और तेज बयानात का तबादला हो रहा है, धमकियां एक दूसरे की तरफ से दी जा रही हैं, इस पस मंजर में अगर आप इस मूव को देखते हैं तो आपको कुछ और नजर आता है इसके अलावा?
नहीं, इसमें तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे ये लगता है ये इनका एक, अगर आप देखें तो 2014 जब से गवर्नमेंट आई है, ये बयान तो जब उनकी दोस्ती के भी बहुत सारे चर्चे चल रहे थे तब भी ये चीजें चल रही थी, और पहले बीच में बात आती थी कि ये जो बॉर्डर स्टेट्स हैं वहां पे ज्यादातर लोगों को दिया जा रहा है चूंकि उनकी रिश्तेदारियां वगैरह हैं, लेकिन अगर आप देखें तो जो लॉन्ग टर्म वीजा है वो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में दिया गया है 19,000 अराउंड, तो और तकरीबन जो गुजरात में है वहां 4,000 दिया गया है और राजस्थान में करीब दिया गया है 10,000। तो ये जो लॉन्ग टर्म वीजा है तो मुझे लगता है ये इनके पहले के जो इनका अपना अनाउंसमेंट है, पहले के जो इनके पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है या जो इनकी पॉलिटिकल लाइन है उसके आधार पर दे रहे हैं। हाँ, ये इस बात को बयान के तौर पर जरूर इस्तेमाल करते हैं कि ये लोग कहते हैं, वो लोग बाकायदा यहाँ बयान देते हैं टेलीविजन चैनल में, उनके शो चलते हैं कि साहब हमें पाकिस्तान में मारा गया, हमारी लड़कियों के साथ गलत व्यवहार किया गया, हमको वहां से परेशान किया जाता है, हमारे पास कॉमन सिविल राइट्स नहीं है, हमारे पास फला राइट्स नहीं है, इन दफ्तरों में हमारे साथ ये होता है। तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट जमात है वो बाकायदा उसके साथ खड़ी होती है और आरएसएस उनको सपोर्ट करता है कि देखिए साहब आप माइनॉरिटी की बात करते हैं, माइनॉरिटी वहां पे ये है, उनके साथ ये व्यवहार होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इनको प्रोटेक्ट करते हैं।
अच्छा सोमवंशी साहब, ये और बताइए मुझे कि जो इस वक्त तो सिस्टम है, जो मतलब इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो वो जो एक रेप्रोचमा की सूरत हाल अब से कुछ अर्से पहले बनती हुई नजर आती थी, उसकी क्या स्टेटस है अब?
देखिए, मुझे लगता है कि एक लंबे समय के बाद ये शुरू में होता है कि ये हम पहले बस चला के ताली बजवाई जाती है, फिर बस बंद करके ताली बजाई जाती है, पहले फिर दोस्ती करके ताली बजाई जाती है, फिर धमकी देके ताली बजाई जाती है, और ये मुझे लगता है दोनों तरफ से है। तो ये दोनों तरफ से है, यहाँ तक कि आप देखिए पिछले दिनों जो एक्शन है वो म्यांमार के साथ हुआ, उसको भी एक पॉलिटिकल माइलेज में दोनों तरफ से इनकैश किया जाने लगा। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जो दुर्भाग्य वाली स्थिति है दोनों मुल्कों के लिए, कि ये वहां की ये जो लव एंड हेट की पैरेलल पॉलिटिक्स चलती रहती है वो अभी भी जारी है, और वो मुझे नहीं लगता कि उसे हुकूमत बदल जाए, कोई बदल जाए, कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में किन्हीं दो चार चीजों पर फिर बातचीत शुरू हो, लेकिन कमोबेश जो हालात है वो इसी तरह दोनों तरफ से चलने वाले हैं।
अच्छा, ये और फरमाइए प्रताप सोमवंशी साहब के आप कोई ये देखते हैं कि ये जो इस वक्त टेंशन नजर आता है दोनों मुल्कों के दरमियान, इसमें कोई कमी होगी या सूरत हाल तब्दील होगी या ये किसमें इजाफा होगा?
नहीं, देखिए कमी तो होगी, मैं ये देखता रहता हूँ कि अगर आप देखें साल भर में तो वो अलग अलग फेज आते हैं, फिर कुछ दिन में कभी कोई बजरिया क्रिकेट फेज आ जाता है, उस दिन में आ जाता है हाँ ये बातचीत शुरू करते हैं, लेकिन मुझे लगता है एट द लास्ट टाइम जैसे होता है ना कि दोनों लोग रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे हैं या लड़ाई बिल्डअप कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आता है पॉलिटिकल सर्किल में, कि पहले वो रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे हैं अचानक एक दिन हो जाता है कि साहब ये वजहें हैं हमारी बातचीत नहीं हो सकती, और अचानक पता लगेगा तल्खियां जारी हो रही हैं, फिर धीरे धीरे वो मध्यम पड़ती हैं, फिर बातचीत शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप देखें तो एक लंबे समय से इसी एक ट्रॉमा में दोनों मुल्कों के बीच चीजें बहुत सारी अटकी हुई हैं कि वो फाइनलाइज बनती नहीं, वो खाली ये कि कभी आप खड़े हो जाते हैं धमकी की भाषा में, धमकी की लैंग्वेज में, और कभी आप खड़े हो जाते हैं कि नहीं हम दोस्ती के हाथ बढ़ाते हुए।
बहुत शुक्रिया आपका जनाब प्रताप सोमवंशी साहब। और हमारे साथ इस वक्त तो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक और साबिक सदर जनाब मजीद अजीज साहब हैं। मजीद अजीज साहब सलाम अलैकुम। हम अब से थोड़ी देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे कराची की हड़ताल के हवाले से। मैं यहाँ पर मईशत के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें निचकारी जो है वो कितनी अहमियत रखती है आपके ख्याल में, बहसियत एक ताजिर के आप क्या कहेंगे इस बारे में?
देखिए हम हमेशा हमारा जो मौकफ रहा है
जी
कि हुकूमत का काम नहीं है कारोबार करना, तिजारत करना, सनअतें चलाना, ये काम निजी शोबे का है। पहली बात तो सबसे ये है। और बात ये होती है कि हुकूमत के नेचुरली जो लोग होते हैं अंडर पॉइंट वो ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, और ब्यूरोक्रेट्स के पास वो एक्यूमन नहीं होता तो एक तेजी मंदी वगैरह का जो बिजनेस कम्युनिटी के पास होता है। जब नवाज शरीफ साहब की जब भी हुकूमत आती है तो एक अच्छा सिलसिला शुरू हो जाता है निचकारी का, और इन्होंने इस दफा जुबैर साहब को जो रखा हुआ है वो चूंकि प्राइवेट सेक्टर से आते हैं तो उनको डायनेमिक्स प्राइवेट सेक्टर के अच्छी तरह बखूबी इनको पता है। और आपने देखा कि जो 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 चीजें हुई थी इस साल प्राइवेटाइज वो माशाल्लाह एक बड़े अच्छे हुकूमत को दाम मिले, जिसमें यूनाइटेड बैंक, हबीब बैंक है, दूसरी चीजें। और इस दफा जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं डिस्को जिसको कहते हैं, उनका इस साल में इनका इरादा है, और हमें उम्मीद है कि एक तो अच्छे दाम हुकूमत को मिलेंगे, दूसरी बात जो सबसे बड़ी है कि हुकूमत इस किस्म के उसमें से हट जाएगी। और ये हमारी तरजीहात यही है कि किसी तरह भी हुकूमत प्राइवेटाइजेशन से निकल जाए। तो हम तो बिल्कुल खुश हैं इनके साथ।
अच्छा मजीद अजीज साहब, मेरी जुबैर साहब से बात हुई थी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं निचकारी के लिए
जी,
उनका
जी।
कहना यह है कि हमने 70 एंटिटीज जो हैं वो आइडेंटिफाई की हैं, और
जी, जी।
उन 70 एंटिटीज को हम अपने टर्म के अख्ताम तक निजी शोबे को दे देंगे, जिसमें PIA भी शामिल है, PIA भी शामिल है, स्टील मिल भी शामिल है। तो क्या आप अगर इन चीजों को दे देंगे निजी शोबे में तो कीमतें तो बढ़ जाएंगी, उससे आपके ख्याल में आम आदमी को क्या फायदा पहुंच सकता है?
देखिए एक चीज आप हमेशा सोचे कि आम आदमी की जब हम बात करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हर चीज उस वक्त डायरेक्टली इम्पैक्ट करे, लेकिन जो मेन जो मकसद है, और जो मेन मकसद ये है कि हुकूमत PI और स्टील मिल को बड़ी मुश्किल होगी इनको प्राइवेटाइज करने के लिए, क्योंकि अभी तक कोई निजी शोबे में वो एयरलाइन आया नहीं है जिसके पास प्लेन भी ज्यादा हो, जिनके पास पूरे पाकिस्तान को ऑफर करते हो। जहाँ तक स्टील मिल है वो आपको पता है कि वो उसमें तनाजा हो गया था लास्ट टाइम भी, उनको क्या था तो उनका जो भी लेते हैं वो सिर्फ जमीन को देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ जमीन बड़ी कीमती है। लेकिन स्टील मिल पाकिस्तान के लिए, ये वाला स्टील मिल कोई काम का नहीं है, सिर्फ सियासी भर्तियां होती रहती हैं, और सियासी भर्तियों से इतने लोग जमा हो गए हैं कि ये तो वाइबल है ही नहीं, और ये सिर्फ जो फिगर्स देते रहते हैं लेकिन 10% भी स्टील मिल चलता नहीं है। और 10% स्टील मिल ना चलने की वजह ये है कि उसमें बहुत से लोग काम कर रहे हैं जो होना नहीं चाहिए उसके अंदर, तो लेकिन मजबूरी है कि हमें।
अच्छा मेरा एक सवाल आपसे और यहाँ पर ये है मजीद अजीज साहब, ये फरमाइए मुझे कि जब निजी शोबा आएगा तो जाहिर है कि इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा, और पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं उनमें कहा यह जाता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है बाहर से, तो ये कैसे बात बनेगी?
नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि जो स्टील मिल है उसको किसने कहा कि सिर्फ बाहर के लोगों को दिया जाए, ये स्टील मिल को स्क्रैप करके जो इनकी जितनी जमीन है उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से उसमें उसको इसकी की जाए, टाउन बनाई जाए, उसमें फैक्ट्रियां भी लग सकती है और उसके अंदर आपके जो क्या कहते हैं शॉपिंग प्लाजा भी बन सकते हैं।
यानी आप समझते हैं कि स्टील मिल की जरूरत नहीं है पाकिस्तान को?
नहीं नहीं, स्टील में छोटे नए लगाए बिल्कुल, उसमें पाकिस्तान में भी लोग हैं जो लगाना चाहते हैं, और जो स्टील मिल 25,000-28,000 आदमी लेके बैठा है वो तकरीबन 1,000 से लेके 1,500 आदमी के अंदर इतनी प्रोडक्शन इससे ज्यादा आ सकती है। तो ये जरूरी नहीं है कि हम बाहर के लोगों को दें, हम लोकल कोशिश करें कि हम लोकल लोगों को हम उसमें बुलाएं।
अच्छा, और एयरलाइन के बारे में आप क्या कहेंगे?
कि आपको हर चीज फॉरेनर्स को देनी है, और आप लेकिन उसमें एक मसला भी है कि इन्होंने तवारीख नाम है उसको उन्होंने बड़ी बड़ी कहा था कि हम गैस देंगे, हम ये देंगे, वो देंगे, और फिर हुकूमत ने गैस वगैरह नहीं दिया, जिसकी वजह से वो सऊदी अरेबिया की ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, वो कहते हैं कि हम तो नहीं कर रहे, वो जो कुछ हमारा है औने पौने दाम बेच के निकल जाएंगे। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि कोशिश ही कीजिए, जो हमारे स्टील वाले हैं, मेगा स्टील के लोग हैं, ब्रिज ऑलरेडी है, उनकी कोई कंसोर्सियम बनाई जाए, वो लोग एक स्टील बनाए जाए जो ओरिजिनल जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो बनाया था अपने दौर में। लेकिन नए जो स्टील मिल प्लांट है उसमें बिजली भी कम खर्च होती है, मशीनें भी फास्ट हैं, कंप्यूटराइज हैं, और लोग भी कम चाहेंगे। हम सिर्फ ये करते हैं कि हम वो चाहते हैं कि हम बस्तियां सियासी बुनियादों पर देते रहें, और हर पॉलिटिकल पार्टी जो आती है वो इसी में, इसके बाद इनकी जो लेबर होती है उनकी यूनियन स्ट्रांग हो जाती है और काम होता नहीं है। और आपने स्टील मिल ने आपने देखा कि पिछली हुकूमत में एक बंदे के हाथ में दे दिया था और उसने अरबों रुपए का नुकसान कर दिया, 21 अरब रुपए जनरल कयूम छोड़ के गए थे, वो भी गए और एक जबरदस्त नुकसान हो गया स्टील मिल को। इसीलिए हम अगेंस्ट हैं इस किस्म की प्राइवेटाइजेशन करने का।
चलें जनाब, बहुत शुक्रिया आपका मजीद अजीज साहब। और सामने इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। हमारे आज के प्रोड्यूसर थे अरसलान शरीफ, अब अपने मेजबान कमर अब्बास जाफरी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
रुकेंगे या जारी रहेंगे? दहशतगर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जंग? आलमी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी?
व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान? जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa। ہم سے رابطہ کیجیے اردو voa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, اردو voa.com.